संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें कल तक संवर अधिकार के बारे में अपन ने चर्चा की, जिसमें भेद विज्ञान का स्वरूप और उसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। हम निर्जराधिकार आरंभ करते हैं। निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा का क्या स्वरूप है, ये बात मानव शिष्यों ने जनागम से समझ रखी है। ऐसा मान करके ही आचार्य यहां निर्जरा की बात आरंभ करते हैं। इसलिए पहले दो मिनट अपन निर्जरा कहते किसे हैं इसे समझ लें, तो फिर समय सार के निर्जरा अधिकार की बात अपनी समझ में आएगी। निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। जो हमारे पुराने राग भाव के कारण ज्ञानावरणी आदि आठ कर्म बंधे हैं आत्मा से, उन कर्मों का उदय में आकर खिरना और उदीर्ण वगैरह होकर खिरना, माने उनका आत्मा से संबंध का अभाव होना, उनके बंधन का अभाव होना, इसका नाम है द्रव्य निर्जरा। और जिन भावों से ये द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों से, निर्मल परिणति से, उसका नाम है भाव निर्जरा। और वो भाव निर्जरा भी दो प्रकार की होती है, एक अस्ति से और एक नास्ति से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अपने आत्मा में शुद्ध भावों की वृद्धि, उसका नाम अस्ति से भाव निर्जरा है, और अशुद्ध भावों की नास्ति, इसका नाम नास्ति से द्रव्य निर्जरा है। मैंने अब अशुद्ध भावों का क्रमशः कम होते जाना, समझे ना, ये नास्ति से भाव निर्जरा है, और शुद्ध भावों का निरंतर बढ़ते जाना, इसका नाम अस्ति से भाव निर्जरा है, है ना। इस तरह से अति संक्षेप में ये निर्जरा का स्वरूप है। संबर पूर्वक निर्जरा होती है। संबर माने कर्मों के बंधन का, कर्मों के आने का रुकना। ये द्रव्य संबर और कर्मों का भाव, शुद्ध भावों का रुकना और शुद्ध भावों का होना, ये भाव संबर है। और इसी जो द्रव्य संबर और भाव संबर हुआ ना, तो द्रव्य संबर में जो कर्म खिले और भाव संबर में जो शुद्धि प्रकट हुई, उसी शुद्धि की निरंतर वृद्धि होते जाना वो निर्जरा है। जब शुद्धि बढ़ती जाएगी और अशुद्धि की हानि होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि शुद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी और हानि माने वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो उसका नाम होगा मोक्ष। तो पूर्ण शुद्धता का नाम है मोक्ष, अथवा सर्व कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। सर्व कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम है द्रव्य मोक्ष, और अशुद्धता का पूरी तरह नाश हो जाना और शुद्धता की पूर्णता हो जाना, इसका नाम है भाव मोक्ष। तो मोक्ष और संबर के बीच की स्थिति का नाम निर्जरा है। एक इस तरह से ये निद्रा का सामान्य स्वरूप है। अब कौन से कर्म की कैसे निद्रा होती है, किन भावों से होती है, कहाँ गुणस्थान में होती है, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन करना योग के शास्त्रों में मिलेगा। लेकिन समय सार का तो आरंभ ही इस बात से होता है कि जो आश्रव अधिकार में ये बात कही थी कि सम्यक दृष्टि जीव के वो भोगों के संयोग होने पर भी आश्रव नहीं होता, ये कहा था ना, अमित्वा दृष्टि को होता है। अब उसी लेन पर यहां कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को भोगों के संयोग होने पर भी निर्जरा होती है, ज्ञानी को नहीं होती, ज्ञानी को होती है। ये बारे तो यहां से शुरू करते हैं बात, यानी इन्हें आश्रम नहीं समझाना है, इन्हें निर्जरा नहीं समझानी है, सम्यक दृष्टि के भोग के होने पर भी निर्जरा है और आश्रम नहीं है। पर आश्रम नहीं है ये आश्रम अधिकार में समझाया, और निर्जरा है ये निर्जरा अधिकार में। ये एंगल है क्योंकि सारा कथन सम्यक दर्शन की दृष्टि से है, सम्यक दृष्टि की कैसी परिणति होती है, और सम्यक दृष्टि में भी खासकर चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को पकड़ना, बहुत से बहुत पकड़ना तो पांचवें वाले को पकड़ना। सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि तो है ना, लेकिन उनको नहीं लेना क्योंकि वहां उनके निर्जरा है ही नहीं, उनके तो मोक्ष ही हो गया, उनके लिए निर्जरा माने झड़ना, वो झड़ने को कुछ है ही नहीं, कर्म ही नहीं है जो जिनकी निद्रा होगी, द्रव्य निद्रा कैसे होगी, अशुद्धि रही नहीं जिसका नाश होगा, अशुद्धि पूरी बढ़ चुकी है, अब उसके बाद क्या बढ़ेगी, सम्यक दृष्टि तो वे भी है ना, ज्ञानवंत तो वे भी है ना, तो उन पर नहीं लेना। उनको तो ये कहना है कि भोगों के विद्यमान में होने पर भी, यानी इसका तो मेन एंगल है निर्जराधिकार का, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है ना, वह अज्ञानी को वही कर्म फल दे तू है, यह अचरज की बात ही है नहीं आ वही, पूछ को शिष्य गुरु समझा वही। विनाशीदास जी का ये छंद है, इसमें निर्जरा अधिकार की क्या विषय वस्तु है उसका संकेत आ गया है। वो कहता है, हे गुरुदेव आप कहते हो कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, तब किन ज्ञानियों की बात हुई है, ज्ञानवंत तो केवली भी है, सिद्ध भगवान भी है, लेकिन उनके भोग निर्जरा के कारण हैं, तो जिनके भोग विद्यमान है उन्हीं की बात हुई ना, तो केवली भगवान के सिद्ध भगवान के तो भोग विद्यमान है ही नहीं, और मुनिराजों के भी भोग विद्यमान नहीं है, जो हैं जैसे हैं छठवें सातवें छठवें कौन स्थान में वो बहुत हैं कि जिन्हें जगत में भोग कहते ही नहीं है, जिन्हें तो पेट का खड्डा भरना कहते हैं, जिन्हें तो समझ लीजिए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कहते हैं, जगत में उसकी भोग संज्ञा नहीं है, तब कौन बचे, बस जिनके भोग विद्यमान है वो ही बचे ना। तो पंचम गुण स्थान वाले और चौथे वाले, तो पंचम गुण स्थान वाले तो पहली प्रतिमा से ग्यारहवीं प्रतिमा तक के होते हैं, तो जहां जितने भोग विद्यमान हैं उतने लगाना बस खत्म, और मुख्यतः चौथे गुण स्थान की दृष्टि से है कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। ऐसी बात आप कहते हो, गजब हो गया, वे ही भोग, ज्ञानी भोग है तो कर्मों की निर्जरा हो, और अज्ञानी भोग है तो कर्म का बंध हो और उसे फल मिले, तो यह अचरज की बात, ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो आश्चर्य कहते हैं, क्योंकि ज्यादा हल्का शब्द कहना उनको अच्छा नहीं लगता है, कहना तो ये चाहते हैं कि ऐसे पक्षपात की बात हमारी समझ में नहीं आती, इसमें तो एकदम धांधलबाजी दिखाई देती है क्या? लेकिन उसको उन्होंने अचरज की बात कहकर के अपना मन को संतोष कर लिया, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, आप ज्यादा आपसे बेईमान तो कह नहीं सकते हैं, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं तो कह नहीं सकते हैं, यही कह सकते हैं साहब आप ये बात कह रहे हैं, इस समय बड़ा आश्चर्य होता है, आपसे पूछ के किया, आप ही ने किया, आप ही ने दिया और आप ही ऐसा कह रहे, हम आपसे क्या कहें, हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो रहा, आप झूठे हो, बेईमान हो, बदमाश हो, हमें फंसा रहे हो, ये बात तो कह नहीं सकते ना, तो इसके अलावा और क्या कहें बोलो, कि ये अचरज की बात कैसी, आप जैसे बड़े आदमी हो गए ऐसी बात करते हो, अब आप जो कहो सो कहो, बड़े आदमी हो लेकिन मेरे तो हृदय में ये बात बैठती नहीं है। मनासी दास कहते हैं कि यह अचरज की बात ये नहीं आवही, क्योंकि ये बात जो कह रहे हैं वो केवली भगवान से लेके चौदह गुणस्थान तक के ज्ञानी सभी कह रहे हैं एक स्वर से। अब मैं ज्यादा क्या कहूं बोलो, किसी से ज्यादा मेरे कहने की हैसियत नहीं है, माने इसके अंदर में उनका बहुत तीव्र असंतोष उनने एक अचरज शब्द से व्यक्त किया और फिर उन्होंने कहा कि बूझे कोई शिष्य इस प्रकार की बात कहकर शिष्य ये प्रश्न करता है अत्यंत विनय पूर्वक। गुरु समझा वही और गुरु जी समझाते हैं और गुरु जी के समझाने में ही पूरा निर्जराधिकार खत्म हो जाएगा, समय सार के निर्जराधिकार की विषय वस्तु ये है, समझिए ना। गुरु जी समझाए क्यों क्या कैसे, वो सारे जो प्रश्न हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, बड़ा अटपटा आरंभ है इसका। देखो आप निकालो निर्जराधिकार की पहली गाथा, मालूम क्या लिखा उसके हेडिंग में, अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, हेडिंग क्या है, अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, और बात क्या कही, देखो पेज नंबर 320, अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं लिखा ना नीचे हिंदी में, और गाथा दोहरा है, उपभोग मिंदिये हिम दब्बान मचे दिणान मिद राणम जम कुण दि समुखी तम सब्बम निजर निमित्तम। कहते चेतन और अचेतन द्रव्यों का, चेदनान माने चेतन, इदरान माने अचेतन इतर, चेतन और अचेतन द्रव्यों का इंद्रियम उपयोगा, इंद्रियों के माध्यम से जो उपभोग करते हैं, चेतन द्रव्यों का और अचेतन द्रव्यों का, चेतन द्रव्यों का मतलब स्त्री आदि, अचेतन द्रव्य का मतलब लड्डू खाना पीना जो भी है ना, समझे, पलंग, ये अचेतन द्रव्यों का उपभोग हो गया, अचेतन द्रव्यों का उपभोग, चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग जम कुणदि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो कुछ करता है, तम सब्बम निर्जरम निमित्तम, वो सारा निर्जरा का निमित्त है, ये दिव्य निर्जरा का स्वरूप है, दिव्य निर्जरा किसे कहते हैं, सम्य दृष्टि जो भोग भोगता है और उस भोग बेसर उसके दिव्य कर्म के खिलने में निमित्त होते हैं, तो दिव्य निद्रा का स्वरूप है लिखा है। ऐसे देखो अगली गाथा में भाव निद्रा का स्वरूप, सारी गाथाएं पढ़ने का तो अपन को अवसर नहीं है, दो तीन व्याख्यान मुश्किल से हो पाएंगे इस पर, और बहुत बड़ा लंबा अधिकार है, लेकिन सेंटर आइडिया तो अपन को समझ नहीं है ना इसका, निद्रा अधिकार में क्या कहना चाहते हैं, दब्बे बहुवंजन्ते नीमा जायदि सोहम वदुखं वा तमस दुःखमुदन्नम वेददि अग्निज्वरम आदि। ऊपर लिखा है अब भाव निद्रा का स्वरूप कहते, देखो अब ये भाव निद्रा का स्वरूप है, इसमें क्या लिखा है कि जब द्रव्य कर्म के उदय को ये जीव भोगेगा है ना, दब्बे ओहजंते, जब द्रव्य कर्म के उदय को ज्ञानी जी भोगते हैं, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी, तब नियमा से दुखम जायदी, नियम से सुख और दुख होता है, लौकिक सुख दुख की बात है, सदा वेदनी का उदय अनुकूल होगा तो अनुकूलता का वेदन होगा, प्रतिकूलता का वेदन होगा, तो संबंध इसी को भी होगा कहते हो, मित्र इसी को भी होगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों को होगा। पाप के उदय में प्रतिकूलता का वेदन मिथ्या दृष्टि को भी होगा, सम्य दृष्टि को भी होगा, और पुण्य के उदय में अनुकूलता का वेदन सम्य दृष्टि को भी होगा और मिथ्या दृष्टि को भी होगा। समझे, आप गालियां बकेंगे तो सम्य दृष्टि को भी बुरा लगेगा और मिथ्या दृष्टि को भी लगेगा, आप प्रशंसा करेंगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। अब फर्क जो अंदर में पड़ेगा उसकी बात बाद में करेंगे, अभी तो कह रहे हैं होगा दोनों को, निंदा में दुख और प्रशंसा में कितना होगा, कैसा होगा, किस जाति का होगा, वो अंतर की बात बाद में, लेकिन होगा ये बात पक्की गारंटी है। अब वो कहते सुख दुख जो होगा तो वो सुख दुख होकर खड़ा रहेगा तो चला जाएगा, बोला क्या कह रहे हैं तर्कसंग, जो वो सुख दुख होगा उदय के अनुसार और वो भी अपने समय पर चला जाएगा, 10 मिनट में 5 मिनट में घंटे में आध घंटे में, ज्यादा कहने जाता है। देखो बहुत से बहुत इष्ट का वियोग हमें हो गया, पुत्र का वियोग हो गया, पत्नी का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, होता ना, तो भी हम सारी जिंदगी रोते ही रहते हैं। जो हमारा दुख होता है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलो। मैंने वो जो सुख दुख होगा वो गारंटी से खत्म होगा, क्योंकि उसके काल की मर्यादा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो सुख दुख वो खुद ही खत्म हो गए, मैंने निर्जर जाएंगे। अपन कहते हैं ना ये अच्छा अच्छा दुख में रो रहा है, अच्छा ढंग से रो लेने दो, ये हृदय हल्का हो जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो परेशान करेगा, बोलते कि नहीं बोलते, एक तरह अच्छी तरह से रो लेने दो तो हृदय हल्का हो जाएगा। तो कहते वो सुख दुख तम से दुखम दंडम वेदधि अग्निज्जरम आदि, वेदन होने के बाद आखिर झड़ तो जाने ही वाला है, अगर झड़ जाएगा ये भाव नहीं जाएगा, क्या याद रहेगी, दृढ़ निर्जरा क्या है कि संबंध इसी भोग भोगेगा और उसके भोग सब निर्जरा के निमित्त है, ये दृढ़ निर्जरा है और ये भाव निर्जरा है। अब इसको वो सिद्ध कर रहे हैं आगे, तो वो जो द्रव्य निद्रा क्यों निद्रा क्यों कहते हैं, तो कहते भोगने के बाद जो खिर जाएगा वो तो सम्य दृष्टि का भी खिर जाएगा और मिथ्या दृष्टि का भी खिर जाएगा, द्रव्य कर्म भी दोनों का ही खिर जाएंगे ना, तो फिर मिथ्या दृष्टि को भी निद्रा कहो, तो सम्य दृष्टि को निद्रा क्यों कहते हो, मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं कहते हो, तो वो भाव और द्रव्य दोनों एक से ही खिर जाते हैं, फिर भी सम्य दृष्टि को निर्जरा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं, तो क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि वो खिरते हैं तो मिथ्या दृष्टि के जितने खिरते हैं कम से कम उतने ही बंध जाते हैं और सम्य दृष्टि के बंधते नहीं हैं, इसलिए उसकी निर्जरा कहते हैं और उसको निर्जरा नहीं कहते हैं। बात तो वही होगी जो आश्रम अधिकार में थी, तो सम्य दृष्टि को बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को होता है, तो यहां भी कह रहे भाई आश्रम ही नहीं हो रहा और आश्रम नहीं हो रहा इसलिए निद्रा कह रहे थे, यदि उनके आश्रम होता और वैसे का बंद होता तो उसे हम निद्रा नहीं कहते, होना तो बोले दोनों को एक, लेकिन वो आश्रम अधिकार और निद्रा अधिकार में बात अंतर आना क्या था, क्योंकि वो नेगेटिव बात थी और ये पॉजिटिव बात है, वो कर्म का बंध नहीं होना वाली बात थी और ये कर्म के खिरने की बात है, यही बात है ना। तो कहते हैं कर्म खिरे जितने खिरे, 500 रुपया की इनकम में 500 रुपया खर्च हो गए तो उसे आप इनकम मानते हो क्या, किसी चीज में आपने खरीदी 10,000 रुपए में खरीदी और 10,500 में बेच दी, अब उसे 10,000 दुकान से लाने में, अपने घर रखने में, मजदूरी में, ब्याज में 500 ही खर्च हो गए तो मुनाफा मानोगे, कहने को तो 500 मुनाफा हुए, कहने को तो 10,000 में आई और 10,500 में बेची, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ ना, तो जितने कर्म खिरे उतने ही कर्म बंध भी गए और सम्मान ऋषि के जितने खिरे उतने नहीं बंधे, जितने और उतने का हिसाब प्रकृति और प्रदेश बंध से नहीं, प्रदेश बंध से नहीं लगाना, प्रकृति छोड़ो, क्यों क्योंकि प्रकृति देश बंध का तो एक नियम है, जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म प्रति समय छते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण बनते हैं। सम्मन ऋषि को भी और मिथ्या ऋषि को ऐसा तो नहीं कि एक किलो खेले और एक किलो बंधे, तो सम्मन ऋषि को एक किलो खेले और आधा किलो बंधे, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है कि उनके प्रकृति में बंटवारे में फर्क पड़ता है। जैसे मान लो सम्मन ऋषि के 41-43 प्रकृतियां है ना, उनमें वो बंटवारा नहीं जाएगा ना, उसके स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा। फर्क है समझे ना। तो उस दृष्टि से वो डिटेल की यहां बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं लगाना तो उसके कुछ आधे 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 धीरे धीरे से कम होते जाएंगे। संख्या से कम हो ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्टर लोग कहते हैं ना, आप भोजन देखो साहब, आप मोटे होते जा रहे हो, आपको भोजन पर कंट्रोल करो। तो क्या करें कि 4 रोटी की 2 रोटी कर दें ना, भोजन कम करो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? डॉक्टर ऐसा नहीं कहते बिल्कुल। आपने डॉक्टरों की बात ढंग से समझी नहीं। डॉक्टर पेट को खाली रहने के लिए नहीं कहते हैं। यदि पेट खाली रहेगा तो वायु बढ़ेगी और न मालूम कितनी कितनी और तकलीफें नहीं खड़ी हो जाएंगी और आपको भूख की पीड़ा सताएगी। तो क्या कहते हैं वो डॉक्टर? ये तो कहते हैं साहब, खुराक कम करने की तो कहते हैं, तो खुराक में पौष्टिक तत्व कम करो, है ना, घी कम करो, दूध कम करो, दही कम करो, चिकनाई कम करो, क्यों? और बजाय 2 रोटी की 4 रोटी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनमें शरीर पर बोझा नहीं बढ़े, जिनमें ऐसे पदार्थ नहीं है जो शरीर में जमते हैं, मात्रा उनमें खाओ ना, फल फ्रूट खाओ। कहते क्या नहीं कहते? फल फ्रूट कितने खाएंगे? जितने खाए सब उतने खाओ। कचरी कितने खाए? सारे बाजार की खादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वो तो पेट पे अगर बोझ ही डालती है, बात समझे ना। तो पेट भर देगी आपको और वो आपको घीमी वाला पदार्थ नहीं जाने देगी, और क्योंकि पेट भर गया ना तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। अब वो तो वैसी की वैसी निकल जाने वाली है, खुद भी निकल जाएगी और वो चिकनाई मिकनाई थोड़ी हुआ तो उसे भी निकाल के ले जाएगी, धक्का मारेगी। तो भूखे मरने के लिए देखे थे, हम कहां कहते हैं, मुफ्त में हमें बदनाम करते हैं डॉक्टर के लोग कहते हैं। हम किसी को भूखा रहने के लिए कहते ही नहीं, भूख दम के भाव पेट भर के खाओ, तुमने वही ऊपर लिख रखा है। तुम तो ये लगा दम के खाओ लेकिन फेंको नहीं। डॉक्टर ये कहते हैं दम के खाओ लेकिन जो पेट में जम जाए ऐसा नहीं खाओ। जो शरीर में जम के रह जाए से निकले नहीं ऐसा मत खाओ। अमरूद खाओ, खुद भी निकलेगा दूसरे को भी निकाल के ले जाएगा। केला नहीं, केला तो जम जाएगा, उसमें तो सब तरह के फैट से वो सब चीजें हैं जो रोटी दाल चावल में है। खैर मैं कोई तुमको खाने पीने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रदेशों की संख्या कम बंधे और ज्यादा बंधे इसकी ये बात नहीं है। क्या ये बात तो उसकी है कि जो खतरनाक कर्म है देना बंद है, मिथ्या तो नहीं बंद है, भैंस का घी नहीं खा लो बस, बात उसका निषेध कर रहे हैं, अरोड़ी दाल का निषेध नहीं कर रहे हैं। जो मिथ्या तो अनंतानुबंधी आदि प्रकृतियां हैं ना, जो अनंत संसार की कारण है, वे नहीं बनी और खिर गए। जो भी भाव थे वो भाव द्रव्य भाव दोनों, वो भोगने का भाव भी खिर गया और वो कर्म का उदय जो भोगने के भाव में निमित्त था वो भी खिर गया। इस तरह से द्रव्य निद्रा और भाव निद्रा दोनों हो गई। इसको कहते हैं द्रव्य निद्रा का स्वरूप है, भाव निद्रा का स्वरूप। आगे वो चर्चा करते हैं बहुत अच्छी। देखो ऐसा सब कैसे होता है? ऐसा होता है ये तो ठीक है, लेकिन ये ज्ञानी को बंद नहीं होता है, संबर हो जाता है, आश्रम नहीं होता है और कर्म फिरते हैं और वही क्रियाएं करते अज्ञानी को बनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या फर्क है उन दोनों में? तो ये जवाब देते हैं कि तद्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम् विराग सैव बाकिल यत कोपि कर्म भी कर्मा भुंजानोपि न बद्धते, है ना। 323 पेज कला से ना। तद ज्ञान सैव सामर्थ्यम, यह ज्ञान की सामर्थ्य है, उसे ज्ञान है ना, अज्ञानी को नहीं है आत्मज्ञान, तो ज्ञान की सामर्थ्य है और वैराग्य का ये बल है। जो ज्ञान और वैराग्य संबंध इसी धर्मात्मा के है, उसकी ताकत है कि भोग भोगते हुए भी कर्म का बंध नहीं होता है और निद्रा होती है। तत् ज्ञान सैव सामर्थ्यम विराग सैव बावला, या ज्ञान की सामर्थ्य है या वैराग्य की सामर्थ्य है। यत कोपि कर्म भी कर्म भुंजान होपि न बद्धते, कि कर्मों को करते हुए और कर्मों को भोगते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं है। ये देखो इसका देखो बनने लगा हिंदी में अनुवाद कर, बंधे ज्ञानी बंधे ना कर्म से सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य अर वैराग्य का बल जानी है। इसका अर्थ करने की जरूरत है, अर्थ सही है, ये बात है। तो वो फिर कहते हैं कि भाई क्या ज्ञान की सामर्थ्य और क्या वैराग्य का बल, हमारी समझ में नहीं आया कि वो छखंड की विभूति का मालिक, 96,000 पत्नियों का पति, हाथ में चक्र रत्न लेकर 60,000 वर्ष तक के लिए लड़ने के लिए निकल गया और सगे भाइयों को भी नहीं छोड़ा। उनने कहा कि हम जाके पिताजी से शिकायत करते हैं कि तुम्हें जहां जाना हो तहां जाओ, लेकिन यहां तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कि पिताजी देखे गए हैं हमको तो गए होंगे, ये बात पिताजी से करना जाकर दे, तो हम दीक्षा ले जाएंगे कि जो तुम्हें दिखे सो करें करना। ये तुम्हारी जो छोटे भाई की पत्नियां हैं ना, ये अपनी तुम्हारी बच्ची जैसी हैं, पुत्र वधू जैसी हैं, यहां हैं, ये विधवा जैसी हो जाएंगी कि मेरे को ज्यादा बात करने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें बोलो क्या करना। साहब वो दीक्षा लेके चले गए कि कोई बात नहीं है, उनके बच्चों को राज तलक कर दो और वे अपनी अधीनता स्वीकार कर लें, तो नहीं तो उनकी भी छुट्टी कर दो। क्यों तुम कह रहे हो कि वे ज्ञान है और बहिराजी हैं, ऐसे बहिराजी हैं ऐसे ज्ञानी हैं, इन्हें कोई ज्ञानी कहते होंगे। आज जरा सी कोई बात हो जाए ना शासन प्रशासन की तो चारों तरफ से हमें सुनाई देता है कि बड़े ज्ञानी बने रहते हैं और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, उसको हटा दिया गया एक मिनट में। अब वो ज्ञानी बने हैं बोलो, और किन के साथ? सज्जे भाइयों के साथ, मां जाए, मैं बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी के जो सौ भाई थे ना जो बाहुबली के साथ किया, वही तो किया, वो तो सौतेले भाई थे, उनके साथ किया, हम कहते सौतेले भाई थे इसलिए किया होगा। बाहुबली का नंबर तो सबसे बाद में आया, क्यों? उनसे पहले तो उनके सज्जे छोटे भाइयों के साथ से बात भई। अब तुम ऐसे भरत चक्रवर्ती को बहिरागी कहते हो, बहिरागी कहते हो, भरत जी घर ही में बहिरागी, भरत जी घर ही में बहिरागी, क्यों? ये मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसी उनका ज्ञान और कैसा उनका वो वैराग्य, कि जिस ज्ञान और वैराग्य के बल से वे भोग भोगते हुए भी निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं और बाकी उन्हीं के उनकी अपेक्षा अनंतमा भाग भी जिनके विद्यमान नहीं है भोग और संयोग, वो बंध को प्राप्त हो रहे। तो उसके लिए उन्होंने रांगे गाथाओं में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। दो गाथाएं हैं कि जय विषम विभुजन तो गई जो पुरुषो न मरण मुबे याद, आपको लग रहा होगा कि आज गाथाएं ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, रोजी ना तो पढ़ते नहीं है, लेकिन ये गाथाएं ऐसी हैं कि पढ़े बिना नहीं रहा ज्यादा। सीधी आचार्य की वाणी में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये आसानी से गले उतरने वाली बात नहीं है ना, तो मेरे भजन से चलेगी नहीं, तो आचार्यों का भजन इस पर पूरी तरह उन्हीं की भाषा में आना चाहिए। कि जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को खाते हुए भी मरता नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी बनता नहीं है। और जिस प्रकार अरति भाव से शराब पीता हुआ भी अरति भाव से शराब पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार वैराग्य भाव से भोग भोगने वाले को बंद नहीं होता। बोलो मेरी बात मानेंगे कोई कि वैद्य जहर खाए और मरे नहीं, क्यों? और कोई शराब पिया और नशा चढ़े नहीं। इसलिए मैंने आचार्य की मूल गाथाएं पढ़कर आपके सामने रखी कि मूल गाथा में ये बात लिखी है कि ठीक है, हम तो जैनी हैं, दिगंबर हैं, कुंद कुंद के भगत हैं, तो वे जो कहेंगे तो हम मान लेंगे, आप भी कहते तो मान लेते, लेकिन सवाल हमारा ही नहीं है। ऐसे भी इस जगत में बहुत से लोग हैं कि जिन्हें कुंद कुंद में भी इतनी श्रद्धा नहीं है, वे कैसे मान लेंगे इस बात को कि कुंद कुंद ने कह दी? क्या कोई वैद्य कुंद कुंद की ये गाथा पढ़ के जहर खाएगा, खाने को तैयार है? क्योंकि वैद्य तो जहर खाने से मरते नहीं है, समय सार में लिखा है। कमलचंद जी, एक पुड़िया जहर की ले जाओ, जहर मत ले जाओ, राखी ले जाओ, उसमें रखकर एक कहोगे एक जहर है, और सब वैद्यों के पास जाओ जयपुर में, के समय सार में लिखा है कि वैद्य जहर खाएं तो मरते नहीं हैं, ये जहर की पुड़िया है, आप जरा खा के बता दीजिए तो हमें पता चल जाए कि ये बात सच्ची है कि नहीं। क्या तुम खाओ ना, कि हम वैद्य नहीं है ना। इसमें तो ये लिखा है कि वैद्य पुरुष जहर खाएं तो मरते नहीं है। और ऐसे अरति भाव से शराब पिए, ये उदाहरण दिया है ज्ञानी के लिए, कौन सा? जहर का। और शराब पीने वाला उदाहरण दिया वैराग्य के लिए। दो अलग अलग उदाहरण है, एक एक उदाहरण माने वो वैद्य माने जानने वाला, विद ज्ञाने धातु है ना। ये बात अम्बेचंद्राचार्य को भी अंदर से लगी थी, एकदम ऐसी सीधी बात शायद लोगों के गले नहीं उतरे। और उसका वास्तविक भाव तो ये है कि जितनी भी दवाइयां बनती हैं ना, उनमें अधिकांश जो असली दवाइयां हैं, जो वास्तव में बीमारियों को काटती हैं, वो जहर से ही बनती हैं। अंग्रेजी में तो उनके नाम भी ऐसे ही हैं, एंटीबायोटिक्स। इसके एंटी कीटाणुओं के, जो एंटी जो कीटाणुओं की नाशक, क्या कीटाणु नाशक दवा है ना, तो वो जहर नहीं होगा। जो कीटाणुओं को मारेगा वो जहर नहीं है। तो सारी एंटीबायोटिक दवाइयां जहर नहीं है भाई। इतनी उन्नत लगाई है तरकीब कि वो आदमी को ना मार पाए और कीटाणुओं को मार दे। नुकसान तो आदमी को भी पहुंचाती है, इतना नहीं पहुंचा पाती है कितना, जितना कीटाणुओं को पहुंचाती है। उनकी बेचारों की जान चली जाती है और आदमी को जरा मुंह में छाले ही होते हैं, वो भी कंप्रेस दे दबा के ठीक ठाक कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति तो उनकी करनी पड़ती है कि नहीं, ये सब जहर ही हुई कि नहीं। और जहर को दवा कहते हैं। बाजार में आपने चिल्लाते हुए लोगों को देखा होगा, चूहा मारने की दवा। देखो मारने की भी दवा होती है, क्यों? दवा तो हमने सुनी थी कि आज तक बचाने की होती है, लेकिन मारने की भी दवा, दवा ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अब देखे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जयपुर में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि मिश्री मावा बहुत खाते हैं, तो कीड़े बहुत हो जाते हैं। तो बाजार से माताएं कीड़े मारने की दवा लाती कि नहीं लाती? कीड़े मारने की दवा तो ये जहर ही है। ये बहुत सी दवाइयां हैं वो जहर हैं, संख्या से बनती हैं, एनसीजीएम से बनती हैं, सांप के जहर से भी बनती हैं, और तो और जाने दो, लेकिन उनसे बीमारियां ठीक होती हैं, कोई मरता नहीं है। तो उसका अर्थ है कि वैद्य माने जो जानकार आदमी है, वो तो बहुत समझदारी पूर्वक कि शरीर को नुकसान नहीं हो, और जो कीटाणुओं के से उत्पन्न हुई बीमारियां हैं, जो जिसको आज की भाषा में इन्फेक्शन बोलते हैं, वो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो बहुत समझदारी से देते हैं। इसलिए अरे वैद्य खाए तो वैद्य नहीं मरे, और वैद्य जिसको दे वो भी नहीं मरे। और तो उदाहरण यहां तक पक्का है, तुमको ये लगता है कि वैद्य खाए और वैद्य नहीं मरे और दूसरा खाए तो मर जाए, क्योंकि वो समझदारी पूर्वक देगा। और इस बात का संकेत हमें चंदाचार्य ने आत्मघाती टीका में कह दिया है, उसमें लिखा है कि अमोघ औषधि के द्वारा, ऐसा शब्द डाला है अमोघ औषधि शब्द, देखो क्या जगह देखता हमने, क्या अमोघ विद्या की सामर्थ्य से, उसके पास ऐसी विद्या है कि वो जहर आपको मार नहीं पाए और आपकी बीमारी को मार दे, ऐसा उपयोग करके जहर का शोध करके संख्या भी शोध के दिया जाता है, वैसे थोड़ी दिया जाता है कि संख्या की दवाई संख्या खा लो। तो उसका अर्थ यह है कि वो जहर भी खाएगा तो बहुत सोच समय में उचित मात्रा में समय पर विधि पूर्वक खाएगा तो ही बचेगा। ऐसे ज्ञानी यदि उपभोग करेगा तो बराबर समझ पूछ करके भूमिका के अनुसार जो संभव है, ये उन भोगों की बात है जो चौथे गुणस्थान की भूमिका में भोग संभव है, उन भोगों की बात नहीं है कि वो परस्त्री सेवन करे और वेश्या सेवन करे और जो चौथे गुणस्थान की भूमिका में संभव ही नहीं है ऐसे भोग करे। और जितना ज्यादा करूं उतनी ज्यादा निद्रा होगी, क्यों और ज्यादा निद्रा होगी तो मोक्ष हो जाएगा फटाफट, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि किन भोगों की बात है कि जिस गुणस्थान में वो ज्ञानी है उस गुणस्थान की भूमिका में जो भोग संभव हैं न्याय के भोग, उनकी बात है पहली बात। और दूसरे वो भी सीमित मर्यादा की बात है। तीसरे कि वो जैसे वैद्य है ना जहर खाता विधि पूर्वक, ऐसा अरुचि पूर्वक, समझे ना, जहर खाने के लिए नहीं बीमारी के रोकने के लिए। बनासी दास ने ऐसा लगा कि उदय बस भोग रहा है ख्याल में, तो ऐसी बात है। एक तो ये तो यहां अमोघ विद्या के बल से वो ये बात करे। अब दूसरा उदाहरण काय का है, शराब पीने का, तो शराब पीने से नहीं चढ़े, ये बात कभी सुनी आपने? हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसा होता है कि जो मुझे शराब चढ़े इस भावना से शराब पीते हैं उन्हें ज्यादा चढ़ती है, और जो इस भावना से पीते हैं कि चढ़े नहीं है, दवाई है डॉक्टर ने बताई है ये अंदर डालने हैं इसके वजह से, तो फिर लेकिन वो नशा नहीं चाहते हैं तो उन्हें कम चढ़ती है। फिर भी ये तो नहीं माना जा सकता है कि वो शराब चढ़े और वो जो अरति भाव से पिया और वो बिल्कुल उस पर असर हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो जयसेनाचार्य को उन्होंने तो अमरचंदाचार्य ने तो अरुचि भाव से इतना कह के काम छोड़ दिया, लेकिन जयसेनाचार्य को नहीं पुसाई ये बात। तो उनने उसमें लिखा टीका में कि उस शराब में ऐसी दवाई मिलाकर कि जिससे वो नशा नहीं चले, क्योंकि तो वो दवा वो लेना तो जरूरी है और नशा चाहिए नहीं, तो दूसरे नशा उतारने वाली दवाई उसमें और डाल दी और फिर शराब पी, ऐसा लिखा है जयसेनाचार्य की टीका में, उनने ऐसा लिखा है क्या कि नशा निरोधक दवाई मिलाकर वो पिएगा तो वो आदमी को नशा नहीं चलेगा। तो वैरागी जो व्यक्ति है वो वैरागी व्यक्ति कर्म के उदय से यदि भोग भोगेगा तो साथ में जो वैराग्य है वो नशा निरोधक दवाई है। ये जो अंतर है दोनों का ना, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, ये दो उदाहरण स्वयं आचार्य देव ने इस समय सार में दिए हैं कि भाई ये स्थिति है। उनका हम विश्लेषण करें गंभीरता से तो ये बात ख्याल में आएगी कि ज्ञान की शक्ति और वैराग्य के सामर्थ्य के कारण उनका उन्हें बंद नहीं होता और निद्रा होती है। ये तो सामान्य कथन है, जब डिटेल में जाएंगे कर्णन योग में जो यहां करना अभी तो संभव है ही नहीं, समय सार में भी संभव नहीं हुआ, जब वहां तो कोई काल की मर्यादा नहीं थी ना कि कितने समय में पूरा करना है। अपन तो अपने पास तो काल की मर्यादा भी बहुत है, लेकिन वे भी उसको उसमें विस्तार से नहीं दे पाए। लेकिन इतना समझ लेना करुणान योग के शास्त्रों में जो बताया, मान लो चौथे गुणस्थान के ज्ञानी हैं तो वे 41 विकृतियां नहीं बंधेंगी और उनमें यदि मान लो कि वो छेरोपसम समय दर्शन है, तो वो जो सत्ता में पड़ा है मिथ्या तनंतान बंदी वगैरह, वे कोई पलट पलट करके कैसे ही जाकर के उदय में आकर के देशघाती के उदय में आकर खेलेंगी, वो सर्वघाती से देशघाती होकर फिर उदय में आकर कैसे निर्जर जाएंगी, ऐसा समझना। और वो जो भाव है उसके उदय में भाव होना था, लेकिन वो भाव इतना जोरदार नहीं होगा कि मिथ्या तो हो जाए, सम्मत का नाश हो जाए, चल मचाल अकार दोष रह करके निकल जाएगा, उदय में आकर वो फिर जाएगा, ऐसा ऐसा समझना। वो करुणा नहीं योग के हिसाब से समझना, और नया नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो छह सौ सम्मा दर्शन है तो 41 में थोड़ी थोड़ी पिकनी बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। शाम में छायक को नहीं बनेगा तो छोसम वाले को भी नहीं बनेगा, उपसम वाले को भी नहीं बनेगा, लेकिन छायक वाले की तो सत्ता में है ही नहीं मिथ्या तो अनंतानुबंधी, और इसके है तो इनका जो जो विधि करुणा योग में है उस विधि से वो है। और छायक सम्मा दृष्टि है यदि तो, और जो प्रकृतियां हैं जो चायत्र मोहिनी संबंधी हैं वे उदय में आकर के खिर जाएंगी, और जो बंद होगा करुणानियों के हिसाब से उसे यहां बंद नहीं गिना है, और जो वो खिरेंगी उसे निर्जरा गिन के ऐसा लगाना, कोई परस्पर विरुद्ध की बात नहीं है। आगम में जैसा कथन है सबकी संगति बैठाल कर वैसा उसका अर्थ करना, ऐसा यहां आचार्य कहते हैं। देखो फिर कोई ने कहा हम कैसे मान सकते हैं ये बात कि वो विषयों का सेवन कर रहा है और फिर भी वो सेवन नहीं कर रहा। तुम तो ऐसी गजब की बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, सेवन कर रहा फिर भी सेवन नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक गाथा है 297 में पढ़ो, बहुत अच्छी गाथा है। सेवन तो विण सेवदी असेव मानो भी सेव गो कोई से कसवी नए पायरणोचिसो हो दी। तो कैसी गजब की बात करते हो, सेवन तो बिना सेवदी, जो सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं कर रहा, समझ जाने लड्डू खा रहा है फिर भी लड्डू नहीं खा रहा, एक भी बात समझ में आती है। जो मम्मी है बच्चे को पीट रही है फिर भी नहीं पीट रही है, तुमको तो हम वीडियो फिल्म बना के बता दें, पीटते हुए बता देंगे देखो इसने पीटा के पीटा, कहां पीट रही होगी, लेकिन मां बेटे को पीट ही नहीं सकती। ऐसी बात कर रहे हो तुम, हम विद्रूप आपके सामने पेश कर रहे हो और फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। वो भोगने की हम फिल्म बना के बता दें तो तुम कहते हो कि नहीं भोगे। सेवन तो भी ना सेवदी है ना प्राकृत में, सेवन तो भी मैंने अपी भी, ये बी है वो भी है, देखो ये बी जाके संस्कृत में तो अपी है और हिंदी में भी हो गई, ये बी है प्राकृत की है ना अपने सेवन तो भी, ये बी से हिंदी में आकर के क्या हुई हो गई, भी हो गई। क्या हुआ ये व्याकरण से, अल्प प्राण का महाप्राण हो गया, बा भा बी बा बी एच भा, फिर एच लगा देते हैं जिसमें ना तो अल्प प्राण से महाप्राण हो जाता है। का है अल्प प्राण, खा है महाप्राण, गा अल्प प्राण, घा महाप्राण, ऐसा ही है ना, सा अल्प प्राण खा महाप्राण। चाहे व्याकरण की बात है भाई साहब, थोड़ी सुन लिया करे कभी कभी है ना। बी सेवन तो बिना सेवदी, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, और असेव मानो भी सेव को कोई, और कोई ऐसे हैं कि असेव मानो भी सेवन नहीं कर रहे तो भी सेवन है, ऐसा कह रहे। द्रिवलिंगी मुनि पांच इंद्रियों के भोगों का सेवन नहीं कर रहे फिर भी ये पांच इंद्रियों के भोगों के सेवन करता है, और चौथा अनुष्ठान वाला सम्मा दृष्टि पांच इंद्रियों के भोगों का सेवन कर रहा है और फिर भी वो सेवन करता नहीं। देखो यदि पगरण चेष्टा कस्तवी नए पायर गो तिशो होदी, इस प्रकरण की चेष्टा में लगा है फिर भी वो प्राकरणिक नहीं होता, ये क्या चक्कर है, प्रकरण की चेष्टा में लगा है फिर प्राकरणिक नहीं होता है। कोई आदमी है उसके घर में शादी है, वो तो गद्दी पे लगा करके बैठा है आराम से, और दोस्त मित्र बहुत आ गए हैं। अब वो कह रहे, देखो भाई साहब आप तो यहीं बिराजो। क्यों बिराजो? कि बार बार लोग आएंगे आपसे मिलने आएंगे, तो आपको मिलना चाहिए। हम लोगों को जो आपने काम बताया है हम काम करेंगे, तो पूछेंगे किससे, और पूछना है तो आप यहां नहीं मिलोगे तो फिर हम क्या करेंगे? आप तो फोन पे बैठे, हम लोग सब काम करने वाले हैं, तो काम करने वाले काम कर रहे हैं। अब सारा काम वो कर रहे हो, ये कुछ नहीं कर रहा है। और शादी किसके है? शादी किसने की? शादी का काम करने का कर्ता कौन है, और उसका लाभ हानि का जिम्मेवार कौन है, उसका बंध निर्जा का जिम्मेवार कौन है? कि जिसे जो कुछ नहीं कर रहा लेकिन वो उसका कर्ता है, वो उसका कार्य अपना मानता है कि मेरी बेटी की शादी है, ये मेरा कार्य है। उसको बोलते हैं प्राकरणिक, जो प्रकरण से संबंधित व्यक्ति, वो तो है उसका प्राकरणिक, उसे बंद होगा लाभ हानि होगी, और जो प्रकरण की चेष्टा में लग रहे उन्हें कोई लाभ हानि होने वाली नहीं। तो जो सेवन करने वाले वो तो प्रकरण की चेष्टा में लग रहे, वो तो कर्म के उदय से चेष्टा में लग रहा है सम्य ऋषि, तो उसका प्राकरणिक है ही नहीं। और वो द्रविलिंगी मुनि तो बिल्कुल दूर है, वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो वो प्राकरणिक है। ये गाथा नहीं पढ़ते होंगे क्यों? ये तो उनका कहना है कि ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुनियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो नहीं लिखाना इसमें, तो वे क्यों नहीं पढ़ते हैं इसे? उन्हें तो पढ़ना चाहिए ना कि ऐसा जगत को धोखा दिया जा सकता है, ये मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये मेरा परिग्रह नहीं है, क्यों? लेकिन ये कुंद को, अमरचंद को, जयसेन को, सुमेसार को, वस्तु के स्वरूप को, सर्वज्ञ परमात्मा को और अपनी आत्मा को, क्यों इनको तो धोखा नहीं दिया जा सकता है ना? जब वो प्राकरणिक है, देखो कुंद ने ये बात लिखी है, जब वो भले ही कुछ नहीं कर रहा हो, भले ही कुछ करता दिखाई नहीं दिया दे रहा हो, फिर भी वो करता है, भोगता है, एकत्व स्वामी है, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ है। अरे आपका कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया ना, तो इसमें जो आपका नाम लिखा है वो मिटवा देते हैं। जब मैंने थोड़ी लगा बोले भक्तों ने लिख दिया है, तो हम मिटवा देते हैं ना, फिर आपको तो कुछ नहीं है ना, और आप भक्तों से कह दो कि कुछ नहीं मेरे को, कुछ नहीं तुम लोग कुछ मत दो, हाथ लगा के देखो क्या इसके लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। तुम कह रहे हो ये सारा जो बना है वो इसके लिए तो बना है, हाँ मेरे को समय से में एक मंदिर बनाना है, कार के लिए बनाना है मंदिर, तो मंदिर पे ऊपर मैं ये लिखाऊंगा कि फला का मंदिर, क्यों इसके लिए तो सारा मंदिर बनाना है। यदि वो नहीं लिखाना है तो मंदिर की जरूरत ही क्या है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देव दर्शन के लिए मंदिर बनाना होता तो समय सकल में मंदिरों की कमी है तो वहां जाके बनाता, किसी गांव में ऐसे कोने में जहां हजारों जैनियों के घर हैं और एक मंदिर नहीं है और उनकी बनाने की हैसियत भी नहीं है, वहां जाके क्यों नहीं बनाता है ना? बंबई जैसे बहुत से महानगर हैं जहां हजारों जैनी एक एक मोहल्ले में रहते हैं, और वे सब मिलके खुद भी बिक जाए तो मंदिर की जमीन नहीं खरीद सकते, क्यों? क्यों जमीन इतनी महंगी है? क्यों? भले ही वे बहुत कमाते होंगे लेकिन बहुत कमाने का अर्थ गांव में जाकर पूरा गांव का गांव खरीद लें, ऐसा एक एक आदमी के पास इतना पैसा है, लेकिन बंबई में सब मिलकर मंदिर की जमीन नहीं खरीद सकते। सचमुच यदि तू वहां बना देगा तो वहां रोजाना हजारों आदमी देव दर्शन करेंगे बाबू साहब, लेकिन तेरे को तो वहां बनाने की इच्छा होती कि जहां कोई आज तक ना गया है ना जाएगा ना भविष्य में कुछ है, ना कुछ था ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं सुना था उसने, नई नई टेकड़ी, क्यों मैं जहां से दस दस मील चारों तरफ कोई है ही नहीं, प्रकरण चेष्टा लिखाना देव देखो कहां गया वो। अच्छा तो ये प्रकरण की वो प्राकरणिक नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी सेवन तो भी असेवका, वो सेवन करते हुए भी असेवक है, उसका अपना वो एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, और उदय दस वो क्रिया विद्यमान है, इसलिए वो असेवक है। इसलिए कहते तुम कहते सेवन करता है और बंद नहीं होता, बात कहां है, वास्तव में देखो तो वो सेवन ही नहीं करता है, सेवन करता दिखाई देता है लेकिन सेवन करता नहीं। सेवको विसेवक क्यों, क्योंकि सम्यक दृष्टि नियत शक्ति ज्ञान वैराग्य शक्ति, या सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। हमें तो दिखाई नहीं देती है कि तू चश्मा लगवा, तू दिखाई नहीं देती है, इससे उसके नहीं है ये कहां सिद्ध होता है, इससे तो ये सिद्ध होता है कि तू अंधा है। नहीं है समझ। एक हमारे मित्र थे ऐसे, उनका जब मैं था तो जब भी प्रचन में कोई नई बात आती थी तो उनका एक ही वाक्य रहता था, परमानेंट बंधा हुआ। नाम नहीं बताता हूं मैं, क्या फायदा बताने से, विचारों का स्वर्गवास हो गया है कि हमने तो कहीं ये शास्त्रों में देखा ही नहीं, बस परमानेंट वाक्य। और मेरा परमानेंट जवाब सो दफे उनने प्रश्न किया होगा, मैंने परमानेंट वही का वही जवाब दिया होगा, आपने कितने शास्त्र देखे, और आपने शास्त्र में नहीं देखा है तो इसमें शास्त्रों की क्या गलती है। और हम तुम्हें शास्त्र में ही दिखा रहे हैं ना, ये शास्त्र में ही है ना, उसी शास्त्र में जिसका तुमने स्वाध्याय किया और उसमें तुमने नहीं देखा। यदि तुम्हें दिखाई नहीं दिया इससे शास्त्र में नहीं है ये सिद्ध नहीं होता है, इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आंख में खराबी हो तो आंख के, और दिमाग में खराबी हो तो दिमाग के, तो है ना वस्तु का स्वरूप इसमें, और तुम्हें नहीं दिखा तो ये तो हमारे अंधापन को सिद्ध करता है कि जिनवाणी में है ना, और हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, हमने तो आज तक नहीं सुना, तो इसमें गलती किसकी है। लेकिन उसकी जो टोन है उस टोन से ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो शास्त्र लिखने वालों की है। क्यों, और शास्त्र सुनाने वालों की है, क्योंकि हमने सुना नहीं और हमने पढ़ा नहीं, इसका मतलब उनने लिखा नहीं होगा, उनने बोला नहीं होगा। अरे भाई तूने नहीं सुना है तो ये तेरे दिमाग या कानों का दोष है, तूने नहीं पढ़ा तो तेरे दिमाग या आंखों का दोष है। वस्तु के स्वरूप में तो दोष है ही नहीं, वस्तु के स्वरूप में तो बहुत गारंटी के सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य नियम से होता है। कि हमने तो बहुत से सम्यक दृष्टि देखे जिनमें वैराग्य और ज्ञान था ही नहीं, या तो वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, और सम्यक दृष्टि होंगे तो उनमें गारंटी से होगा, और फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो वे तुम्हारी गड़बड़ी है। लेकिन वहां तो नियम है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य नियम से होता है। क्या स्थिति होती है ज्ञानी जीवों की, इसकी शेष चर्चा कल।
शांति सुधावर साई जिन वाणी, शांति सुधावर साई जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूरा पर सब दोष रहित पाप क्रिया से शून्य शोध, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधावर साई जिन वाणी, परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधु के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए जिन वाणी, शांति सुधावर साए जिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा महाकेश पाता जग सारा, जल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, सत तत का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी।